आज हमारे बीच में इस नुमा शाम के समय परम आदरणीय ममता दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से, तालियों से, हृदय की खुशी से दीदी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मधुबन के इस रूहानी बगिया में बाबा के इन चैतन्य फूलों में से एक दिव्य गुणों से सुशोभित सुगंधित एक ऐसा पुष्प हमारी आदरणीय ममता दीदी जी है, जो 40 वर्ष से भी अधिक समय से तपस्वी जीवन, समर्पित जीवन, ईश्वरीय जीवन जी करके एक नहीं अनेक आत्माओं को बाबा के साथ जोड़ने का पुनीत कार्य कर रही है। आप नम्रता, दिव्यता, सरलता की एक अविरत मूर्ति है। सरल स्वभाव, मधुर वाणी आपके व्यक्तित्व की पहचान है। और आज हम बहुत सुंदर विषय के साथ दीदी जी से मिलेंगे, पुरुषार्थ की, तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि, क्योंकि पुरुषार्थ ही वो एक सरल मार्ग है जिससे हम तपस्या की ऊंची मंजिल तक पहुंच सकते हैं और बाबा के समान बन सकते हैं। तो चलिए हम सभी दीदी के वरदानी बोल से सुनेंगे तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये ओम शांति का प्यारा मंत्र हम सभी का वास्तव में प्यारा है, क्योंकि ये ओम शांति ही हमारी आत्मा को शांत स्वरूप अपने स्वधर्म में टिकाने की स्मृति दिलाता है। हम स्वयं को ही भूल गए तभी आज हम किस मोड़ पर खड़े हुए थे, लेकिन हम बहुत 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 भाग्यवान, भाग्यशाली आत्माएं हैं जो हमें बाबा मिला है। ना हम सभी भाग्यशाली कि बाबा जो खुद आकर के हमें पढ़ाते हैं, श्रृंगारते हैं, ऐसी प्यार की पालना, साजन बन सर्व संबंधों का अनुभव भी हम करते हैं। तो ऐसे बाबा को हमने इस समय संगम युग में ही पाया है। जो कहते थे पाना था जिस पार ब्रह्म को, उसको पा लिया, बाकी क्या चाहिए। तो आत्मा तृप्त तो हो गई, लेकिन प्राप्त करके बाबा के प्यार को, बाबा की पालना को, लेकिन बाबा की हमसे क्या आश है और आगे जीवन में हमारी भी क्या आश है, क्या लक्ष्य है, उसे देख करके हमें जीवन रूपी गाड़ी को सफलता की जर्नी बनाते हुए, सफलता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार तो हम कहते हैं, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन सफल रीति से हम जीवन कैसे जिए। जीवन तो दुनिया में सभी जी रहे हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, और बाबा के बच्चे तो सभी हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे जानते हो चाहे नहीं जानते हो। लेकिन हम बच्चों ने जो बाबा को यथार्थ पहचान कर उसकी पालना में पलने का जो भाग्य प्राप्त किया है, ये किसी भी युग में और सभी को प्राप्त नहीं हो सकता। कोटों में भी कोई, कोई में भी कोई, हम सब विरले आत्माएं हैं जिसने इस संगम युगी जीवन को पाया है। तो हमारी जीवन कितनी महान है, लेकिन बाबा की याद के आधार से अपने स्वधर्म आत्मिक स्मृति में टिक करके पहले अपनी आत्मा की चेतनता को हम जागृत करते हैं। बाबा की याद से स्वधर्म में टिक करके जो हमारी चेतना जागृत होती तो जीवन जागृत होता, और फिर बाबा हमें जो उमंग उत्साह के फिर से पंख दे करके उड़ाता है। जीवन में अगर उमंग उत्साह है और सफल रीति से हमें जीवन जीना आता है तो अंदर की शक्ति से ही, गुह्य शक्ति के आधार से ही हम अपने जीवन में सफलता की उड़ान भर सकते हैं। एक बार एक गुब्बारा बेचने वाला था, एक गुब्बारा बेच रहा था। उसके पास कई रंगों के वैरायटी गुब्बारे थे। तो एक बच्चा उसके पास आता है और पूछता है, ये काले रंग का गुब्बारा है, ये भी उड़ता है क्या? तो गुब्बारे वाले ने कहा, चाहे काला हो चाहे लाल हो, रंगों के आधार से गुब्बारा नहीं उड़ता है, अंदर की हवा के आधार से उड़ता है। तो ऐसे हमारे अंदर की जो शक्ति है उसको हमें इमर्ज करके, जागृत करके फिर जीवन जीना है, तब हम सफलता की उड़ान भर सकते हैं। जीवन तो दुनिया में सभी जी रहे हैं, लेकिन हम सबको क्या कहते हैं कि हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में राजयोग सिखाता है जीवन जीने की कला, है ना? तो जीवन जीने की कला हम जब दूसरों को सिखाते हैं तो हमें कैसे जीवन जीना है ना? वो कला हमें अपने लिए तो प्रैक्टिकल करनी होगी ना, तब तो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ के आधार से सबको जीवन जीने की कला सिखा सकेंगे। बाकी ऐसे ही जीवन जी लेना, कईयों से पूछो जीवन सब ठीक है, बोले हाँ जीवन कट रहा है, व्यतीत हो रहा है, पास हो रहा है, लेकिन बहुत खुशी है जीवन में, बहुत नशा है जीवन में, बहुत उमंग उत्साह से भरा जीवन, सफलता पूर्वक जीवन जी रहे हैं, आनंद परमानंद का अनुभव करते हुए जी रहे हैं, ये तो नहीं है। जो हम बच्चे संगम युग पर आनंद परमानंद का अनुभव और किसी युग में नहीं कर सकते, परमात्मा पिता के द्वारा जो प्राप्ति पालना श्रृंगार जो हम बच्चों का अभी हो रहा है उसमें जो हम परमानंद का अनुभव करते हैं वो किसी भी युग में नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में सफलता की जर्नी, सफल रीति से जीवन जीने की ही सफलता की जर्नी है। तो हमें भी अपना जीवन सफल करते हुए, जीवन में कभी भी हार का अनुभव न करते हुए, हार में भी सफलता को प्राप्त करें, हार में भी जीत समाई हुई हमें नजर आती रहे, उस रीति से जीवन जीना है। तो वो हम चेक करें कि जीवन हम किस रीति से जी रहे हैं, नशा भी रहे निश्चय के आधार से ही नशा बनता है। अगर हमें निश्चय है कि मैं कौन, मेरा कौन, दादी जानकी कितना पक्का कराती है, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे जाना कहाँ है, वो निशाना कौन, और नशा चढ़ा हुआ हो तो निश्चय के आधार से नशा चढ़ाते हुए और हम अपने निशाने तक, मंजिल तक गति सदगति को प्राप्त कर सकें, मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकें और दूसरों को भी कराने के निमित्त बन सकें। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे तुम्हें ही सबको मुक्ति देने के निमित्त बनना है। बाबा तो है ही, लेकिन हम बच्चों को भी सर्वात्माओं को मुक्ति दिलाने के निमित्त बनना है। तो ऐसी सफलता की उड़ान हमें भरते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाते रहना है। तो संगम युग चल रहा है, ऐसा पुरुषोत्तम संगम युग जिसमें केवल उस प्रभु मिलन, उस भगवान की पालना का प्यारा अनुभव वो किसी भी युग में नहीं हो सकता। तो ऐसा अनुभव करते हुए, लेकिन आगे भविष्य में हमें ऊंच पद प्राप्त करना है। बाबा की आशा है, हम बच्चों से सदैव आश रहती है कि मेरे बच्चे ऊंच पद पाएं, सब राजा बच्चे बन जाएं। तो बाबा तो हमें राजयोग के आधार से राजाओं का भी राजा बनाने आया है, तो हम थोड़े में खुश क्यों हो जाएं? बाबा क्या कहता है, जो थोड़े में खुश होते हैं वो कौन है? उनको बाबा कहता है ज्ञानी भक्त। अब तो हम बच्चे बन गए ना, बच्चे माना अधिकारी, तो मांगने वाले नहीं रहे, अधिकारी बनकर फुल वर्षे के प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा की आश को भी और अपने भी लक्ष्य के आधार से अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो उस अनुसार हमारे अंदर लक्षण भी आते जाते हैं। तो बाबा के बच्चे संगम युग के समय को जानते हुए, भगवान की समय प्रति समय शिक्षा सावधानियां प्राप्त करते हुए, श्रीमत पर चलते हुए पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं, लेकिन समय कितना बचा है, समय को देख करके हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, तीव्र गति वाला पुरुषार्थ, उसे हमें करना है। तो कई समझ ही नहीं पाते हैं तीव्र पुरुषार्थ, तेज पुरुषार्थ कैसे करना है, किसको कहते हैं। भगवान से हम जुड़ गए, उसको हमने अपना सब कुछ मान लिया, तो वो ऑटोमेटिकली हमें अपनी ओर खींच लेता है। चुंबक के नजदीक जाओ तो चुंबक खींच लेता है। तो वो क्षमा है, हम परवाने हैं, सिर्फ उसके ऊपर हम फिदा हो जाएं, सिर्फ फेरी पहनने वाले परवाने न रहें, फिदा होने वाले परवाने बन जाएं, फिर ऑटोमेटिकली उससे जुड़ने के आधार से पुरुषार्थ हमारा तीव्र बन जाता है। तो सारी शिक्षाएं बाबा ने इस वरदान भूमि, इस मधुबन के मधुरता के सागर की भूमि, पुण्य भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि, जिस भूमि से भगवान को भी प्यार था, भगवान के रथ ब्रह्मा बाबा को भी इस भूमि से बहुत प्यार था, तो हम सभी बाबा मिलन के लिए तो आए हैं, लेकिन अंदर से ये भी लक्ष्य रहता है कि हम अपने पुरुषार्थ को वहां जाकर अपनी स्थिति को अपनी अवस्था को अच्छी बनाकर आएंगे। लक्ष्य रहता है ना सभी का कि वहां कुछ पुरुषार्थ होगा, हम अपने तीव्र पुरुषार्थ की लाइन को पकड़ सकेंगे, अपनी स्थिति और अवस्था को जमा सकेंगे, इसलिए हम मधु बनाते हैं। और अगर हमारी स्थिति अच्छी होगी, अवस्था अच्छी होगी, तो बाबा मिलन का भी सुख हमें अच्छी तरह से मिल सकेगा। ये लक्ष्य लेकर के ही आते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ माना क्या? बाबा के हम सभी बच्चे हैं। जब शुरू शुरू में बाबा ने यज्ञ स्थापन किया था, स्टार्टिंग में 14 वर्ष तक सभी को पता है कि दादियों ने कितनी तपस्या की। तो जरा सोचो, वो 14 वर्ष की तपस्या का उनके पास टाइम था, लेकिन आज हमारे पास इतना टाइम है? समय को देखते हुए, सरकमस्टांस को देखते हुए हमारे पास उतना नहीं है, लेकिन जितना भी है उतना तो हमें बड़ी सावधानी से पुरुषार्थ में लगाना होगा ना, सावधानी जीवन में रखनी होगी। आज हम देखते हैं कि मटका होता है, अगर उसमें एक छेद भी होता है और अगर हमने उसमें भरते हुए पानी सावधानी से नहीं भरा, उस छेद को देखा ही नहीं और सीधा उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा? बह जाएगा ना। सावधानी रखी नहीं, हमने देखा ही नहीं, छेद था उसमें। आज भरे दूध के अंदर इतना सा एक बूंद भी अगर पॉइजन चला गया तो वो तो पूरा ही पॉइजन बन जाता है ना? तो इसलिए हमें ये देखना है कि कहां कौन सी फॉल्ट है, कौन सी कमी है, कौन सा छेद है जो मेरा पुरुषार्थ बह न जाए। जीवन में अटेंशन रखते हुए, और वो कैसे रखे, बहुत सरल तरीका बाबा ने बताया हुआ है कि अपनी जीवन रूपी नैया को केवल बाबा की श्रीमत के आधार से चलाओ। आज हम कोर्स भी नए को देते हैं, योग तपस्या भी कराते हैं, खुद बैठ के दृष्टि योग भी कराते हैं, बहुत पालना करके किसी को निकालते हैं। लेकिन शुरू शुरू में ना कोई कोर्स होता था, ना कोई इतना ज्ञान क्लियर था, लेकिन केवल तपस्या के आधार से और बाबा के प्यार की पालना के आधार से तीव्र पुरुषार्थ करते करते और मुरली के आधार से आज हमारी दादियां देखो बाप समान बन हम सब के आगे आज उदाहरण मूर्त है, प्रेरणा स्रोत है। और ना उस समय की बात कि केवल उस समय ही मुरलियों का अध्ययन किया, लेकिन आज तक भी 3-4 बार एक मुरली को दादी रिवाइज जरूर करती है, पूरी पूरी मुरली पढ़ती है 3-3, 4-4 बार आज भी। लेकिन आप खुद सोचो अपने भाई बहन, एक बार ज्यादा से ज्यादा चलो 2 बार मुरली पढ़ ली। हमने यहां तक भी देखा कई सेंटर्स पर मॉर्निंग में मुरली क्लास हो गई और अगर शाम को क्लास में आए, अगर उनको बहन जी कह भी देंगे कि आप क्लास में बैठो, नहीं हमने मुरली सुबह सुन ली थी, दूसरी बार नहीं सुनते, योग में बैठ जाएंगे। लेकिन दादियां 3-3 बार 4-4 बार आज भी मुरली पढ़ रही हैं। मुरली ने जीवन को ऐसा बना दिया, क्योंकि मुरली से ही हमें बाबा की श्रीमत प्राप्त होती है, शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, सावधानियां मिलती हैं, सब प्रकार की पालना मुरली के थ्रू तो बाबा हमारी करता है। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ करना माना क्या? जिसके जीवन में मुरली का महत्व है और उस महत्व से वो मुरली को अपने जीवन में लाकर के चलता है, उसका पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली तेज हो जाता है, क्योंकि वो अपनी जीवन रूपी गाड़ी को श्रीमत रूपी पहिए पर चलाता है, तो एक्सीडेंट का कोई डर ही नहीं है। पहिए से गाड़ी उतरेगी तो एक्सीडेंट होगा ना, लेकिन श्रीमत रूपी उस पर अपनी जीवन रूपी गाड़ी को चला रहे हैं, कोई खतरा नहीं है। माया के साथ एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, माया आ ही नहीं सकती, कहीं भी कुछ भी खतरा नहीं है, न टकराओ न कहीं अटकाओ न कहीं प्रभाव न कहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें जब ईश्वरीय आकर्षण ने हर प्रकार से आकर्षित कर लिया है तो क्या कोई मायावी आकर्षण हमें आकर्षित कर सकता है? कभी नहीं। जो ईश्वरीय आकर्षण में आकर्षित हो गए वो मायावी आकर्षण में आकर्षित हो ही नहीं सकते। जिसने वो ईश्वरीय रस को, परमात्म प्यार के रस को चख लिया, उसे मायावी रस की आवश्यकता नहीं है। भगवान प्यार के सागर, परमात्मा की प्यार में पलने वाली आत्मा, उसे किसी के प्यार की भी आवश्यकता नहीं है। इतना प्यार, इतना बाबा की छत्र छाया में रह करके हम आत्माएं अनुभव करती भी चलती हैं। तो मुरली के द्वारा ही हमें श्रीमत मिलती, शिक्षाएं मिलती, सावधानियां मिलती, इसलिए मुरली के महत्व को अगर हम जान करके मुरली को बार बार पढ़कर बार बार रिवाइज करते हुए चलते हैं, हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता। तो पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए कुछ एक बातें जरूर हमारे जीवन में हमें नोट करनी चाहिए। सबसे पहली बात, मुरली का तो महत्व होना ही चाहिए। दूसरा, हमारी दैनिक दिनचर्या बड़ी नियमित होनी चाहिए। आज हम मधुबन में आते हैं, देखते हैं यहाँ की दिनचर्या कितनी नियम प्रमाण, कितनी नियमित है। चाहे हजारों भाई बहन हैं, लेकिन कायदा सब कुछ नियमित हमारी दिनचर्या चलती है। अगर हम जहां भी रहते हैं, जिस भी स्थान पर, अगर मधुबन की भी बनाई हुई दिनचर्या के आधार से हम अपना जीवन जीते हैं, तो महसूस करते हैं कि हम मधुबन में ही हैं। वो ही दिनचर्या हमारी होनी चाहिए। तो हमारी दिनचर्या अगर एक्यूरेट है, अलर्ट है, नियमित है, तो फिर जीवन भी हम सफल रीति से जी करके और सफलता का अनुभव करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी दिनचर्या को ही ऊपर नीचे करते रहते हैं, ठीक रीति से दिनचर्या बनाकर अगर हमने दिन को नहीं निकाला, तो फिर उतना सफलता का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि कई जीवन में चैलेंजेस आते हैं, कई समस्याएं आती हैं, पारिवारिक जीवन में कई सरकमस्टांसेस आ जाते हैं, परिस्थितियां समस्याएं आ जाती हैं, जो एक एक को निपटाते हैं दूसरी दूसरी खड़ी हो जाती हैं। समस्याओं के साथ फिर स्थिति ऐसी हो जाती है, अगर हमारी अवस्था ठीक ना हो तो समस्या के साथ फिर खुद ही समस्या बनकर बैठ जाते हैं, समाधान स्वरूप नहीं बन पाते। लेकिन अगर हम अपनी स्थिति अवस्था को अचल, अडोल, एक रस रख करके चलते हैं, तो फेलुअर नहीं होते हैं। समस्या भी टिक नहीं पाती, वो हार करके चली जाती है और हम सफलता का अनुभव करते हैं। लेकिन बार बार अगर हम हलचल में आते रहेंगे, आज देखो पानी अगर शांत होता है तो अंदर तक क्या है पानी के वो दिखाई देता है, लेकिन अगर वो शांत ना होकर उसकी लहरें आती रहेंगी तो अंदर का दिखाई नहीं देगा। तो जब हम आत्माएं प्यारे बाबा की याद में बहुत शांत स्थिति में बैठ जाती हैं, तो दूसरों को तो छोड़ो, अपने आप को हम अच्छी तरह से चेकिंग करके चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर में जो शक्ति है उसको हमने कहां तक जागृत करते हुए, अपने जीवन को जागृत करके हम चल रहे हैं, जी रहे हैं, और कौन सी कमियां हैं हमारे अंदर में जो हमें हटानी है, और कौन सी विशेषताएं हैं उनको जागृत करते हुए, उन विशेषताओं के साथ अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं की भी जो विशेषताएं हम देखते हैं उनको अपने साथ जोड़ते हुए कैसे सहयोगी बनाकर उनको हम चला सकते हैं, वो कला भी हमारे अंदर आ जाती है। क्योंकि राजयोग के आधार से, बाबा की प्यार की पालना के आधार से, ये भी बाबा कला सिखा देता है कि कैसे एक दो को हम आपस में सहयोगी बनाकर, संस्कार एक दो के साथ मिलाकर, आपस में संस्कारों की राह करते हुए चलें, जो हरेक की विशेषताओं को देखकर अपने साथ जोड़ते हुए, उसे सहयोगी बनाते हुए और उसे भी साथ लेते हुए आगे बढ़ सके। क्योंकि यहां अगर हम संस्कारों की आपस में रास करेंगे तभी भविष्य में कृष्ण के साथ रास कर सकेंगे। अगर यहां संस्कारों की रास नहीं की तो वहां वो रास कैसे कर पाएंगे। तो हम सभी ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वरीय परिवार का सुख वो भी सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होता है। तो हमारे परिवार के अंदर पूरे परिवार को बाबा ने एक सूत्र में, एक नियम में, एक मर्यादा में, एक वृत्ता, एक नामी, एक बल, एक भरोसे, एक के आधार से जोड़ करके चलाया है। तो हमारा ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों का संगठन न सिर्फ हमारे लिए लेकिन विश्व में भी सब महसूस करते हैं कि अच्छा, आप ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों का संगठन है ना? और संगठन में शक्ति होती है, एकता में बल होता है। लेकिन कैसे एकता में आए? हम सब एक के हैं, एक नामी हैं, तो एकता में आए ना, संगठन तैयार हुआ ना। और हम सभी का एक जैसे नियम, एक जैसी दिनचर्या बाबा ने बताई है। तो हमारी दैनिक दिनचर्या, चाहे हम मधुबन में रहें, चाहे हम अपने लौकिक परिवार में रहें, चाहे हम कहीं भी रहें, हमारी दिनचर्या बड़ी एक्यूरेट, अलर्ट और अच्छी बनी हुई होनी चाहिए। मॉर्निंग 3 बजे से 5 बजे तक का बहुत बेस्ट टाइम है अपनी पुरुषार्थ की तीव्रता रखने का, 3 से 5। फिर आप लोगों 4:45, 3 से 4:45 समझो, 4:45, 5 बजे मैं समझती हूँ बाबा के बहुत बच्चे बाबा को बड़े प्यार से पत्र भी लिखते होंगे, जो नहीं लिखते होंगे वो लिखें, बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। 4:45 से 5, 15 मिनट बाबा को पत्र लिखो, भविष्य की बातें नहीं लिखो, वो तो सब मालूम है क्या है, वर्तमान में हमें क्या करना है, क्या हम चाहते हैं और बाबा से क्या प्राप्ति करना चाहते हैं, या वर्तमान में क्या मेरी समस्या है, वो भी लिख सकते हैं, बाबा को बता सकते हैं। बहुत प्यार से बाबा को पत्र लिखो, जो आपके दिल की बात हो उस दिलवर बाप को लिख करके अपने मन को एकदम हल्का कर दो। क्योंकि मन जितना हल्का होता, जितना शुद्ध होता, जितना पवित्र होता, उतना ही मन पॉजिटिव की तरफ जाता है। हम सबको क्या कहते हैं, मन मना भव। गीता का सार क्या है, मन मना भव। गीता में लिखा है मन मना भव, गीता का मंत्र है। सार तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा, और मंत्र है मन मना भव। तो मन से प्रभु को याद करना, और मन ही भारी है, मन ही हल्का नहीं है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो वो प्रभु तक कैसे पहुंचेगा। तो मन को प्रभु से जोड़ने के लिए जब हम उसको हल्का करेंगे, बाबा को पत्र लिखकर एकदम मन को हल्का कर दो, मन को प्रभु से सवेरे से ही जोड़ो, गीत है ना, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, बाबा को संग संग सवेरे से ही अपने संग रख लो, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ रहेंगे, बाबा की संग को हमें नहीं छोड़ना, संग का रंग भी हमें वैसा ही चढ़ेगा। सिर्फ संगम युग पर ही तो बाबा का संग हमें मिलता है, बाकी तो देह देह के संबंधियों के संग में ही चलते हैं। तो मन जब हमारा हल्का होता है ना, पवित्र होता है ना, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव तरफ जाता है। अगर कोई नेगेटिव की तरफ ले जाने की कोशिश भी करता है, नेगेटिव बात भी अगर कोई करने लगता है, तो भी वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेता है। जैसे चश्मा होता है ना, जो जैसा चश्मा पहनेगा वैसे ही तो दिखाई देगा। अब जिसने पॉजिटिविटी का चश्मा पहन लिया तो क्या होगा, पॉजिटिव दिखाई देगा। अगर नेगेटिव का चश्मा पहना होगा तो नेगेटिव नेगेटिव दिखाई देगा। पर बाबा ने तो हमें पूरी लाइफ को ही पॉजिटिव बनाया है ना। अगर हम पहले अपने मन को पॉजिटिव बनाते हुए चलेंगे, कुछ भी नेगेटिव नहीं, क्योंकि नेगेटिव क्रिएट करता है टेंशन को। नेगेटिव एक दीमक होता है जो अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, सारी शक्तियों को बहा देता है। और हम तो मन के द्वारा प्रभु से जोड़ करके अपने मन बुद्धि की तार को उससे करंट लेते हैं, शक्ति लेते हैं, पावर लेते हैं, ताकत वो बल लेते हैं। अगर उसमें दीमक लग गया नेगेटिव का, क्यों होगा क्या, सारी शक्ति बह जाएगी ना, फिर दीमक तो अंदर तक खोखला कर देता है, तो नेगेटिव हमें पूरा खोखला कर देगा, पुरुषार्थ को ठप कर देगा। तो नेगेटिव बातें तो इस नेगेटिव दुनिया ही टोटल नेगेटिव है, मायावी दुनिया है, नेगेटिव दुनिया है, वातावरण भी नेगेटिव है। लेकिन उसमें रहते हुए हमें पॉजिटिव का चश्मा पहन करके ही रहना होगा, तभी हम पॉजिटिव तरफ चलते चलते अपनी पूरी लाइफ को पॉजिटिव बना लेंगे। जब हमारी पॉजिटिव पर्सनालिटी बन जाएगी तो क्या होगा, अभी तो हम कहते हैं हम होवनहार देवी देवताएं हैं, तो अभी नेगेटिव कॉपी में है ना, फिर पॉजिटिव कॉपी बन जाएगी, हम प्रैक्टिकल में देवी देवता बन जाएंगे। फोटो नहीं जो बनाते हैं उसकी नेगेटिव कॉपी काली होती है, उसके बाद उसका मेथड से उसको धोते हैं फिर वो गोरी हो जाती है। तो अभी हम सब नेगेटिव कॉपी में है, फिर पॉजिटिव कॉपी बन जाएगी। तो हमें मन को पॉजिटिव बनाते हुए अपनी मनचर्या, तनचर्या, दिनचर्या सबको अमृत वेले से ही एक्यूरेट, नियमित, अलर्ट बना लेना है। आज के दिन मुझे क्या क्या करना है, कहीं तो सवेरे अपनी दिनचर्या पूरी 4 बजे 3 बजे से शुरू करते हैं, आगे और पूरा दिन किस रीति चलाना है वो नोट कर लेते हैं। आज के दिन मुझे क्या क्या करना है, आज के दिन की सिर्फ दिनचर्या, रोज की चलो नहीं, तो सवेरे उठे आज मुझे क्या क्या कार्य निपटाना है, बाबा आपको भी मेरे साथ रहना है और बाबा आज ये मेरे को कार्य को पूरा करना है। तो कई हम छोटे छोटे जीवन में लक्ष्य बनाते बनाते भी अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते हुए चल सकते हैं। कई अपने लक्ष्य एक दिन के बनाते हैं, एक सप्ताह के बनाते हैं, कोई एक मास के बनाते हैं, कोई एक वर्ष के बनाते हैं। लक्ष्य बनाते बनाते लक्षण ऑटोमेटिकली आते जाते हैं, कहते हमारा लक्ष्य है। अब बाबा मिलन के लिए साल में एक बार आना कईयों का लक्ष्य है, बस हमें बाबा मिलन में जाना ही है तो आते हैं। वो भी लक्ष्य बनाया है जिसने, वो पहुंच पाते हैं। आज बाबा के यहां इस वरदान भूमि, तपो भूमि, पुण्य भूमि, कर्म भूमि, ब्रह्मा बाबा की भी बड़ी प्यारी भूमि, उनको भी इस भूमि से बड़ा प्यार था, तो यहां पर तपस्या भट्टी रखी जाती है माताओं की, भाइयों की, सबकी। लेकिन कईयों को उसका महत्व ही नहीं है, भट्टी में नहीं जाना, हमें बाबा मिलन में ही जाना है। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ आपका भट्टियों में ज्यादा होगा। बाबा मिलन का सुख अलग है, पर बाबा हमसे क्या पुरुषार्थ कराते हैं, तीव्र पुरुषार्थ, वो भट्टियों में प्राप्त होगा आपको। भट्टियों में आना बहुत जरूरी है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी आज यहां बाबा मिलन में आए हैं, बाबा मिलन का तो सुख लें, लेकिन ये भी संकल्प, अपना दृढ़ संकल्प करके जाएं कि हमें बाबा की भट्टियों में भी, जो अगर हमें बाबा के घर से बुलावा मिलता है, तो उन भट्टियों को अटेंड करें, ताकि हम पुरुषार्थ को अपना तेज कर सकें। क्योंकि समय को देखते हुए जब भी जिस भी प्रकार का, चाहे भट्टियों का, चाहे बाबा मिलन का, बाबा के घर से बुलावा आया है, तो हमें जाना है। हमारी उन्नति होगी ही होगी, हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा ही होगा। तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर संकल्प में दृढ़ता लाते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो दृढ़ संकल्प सफलता को का प्रथम सोपान है। वो सफलता जरूर दिलाता है। एक होता है संकल्प, एक होता है दृढ़ संकल्प। जब दृढ़ता वाला जीवन में संकल्प आ जाता, तो सफलता की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। कहीं भी माया का आने की मार्जिन नहीं रहती है। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या, मनचर्या, तनचर्या आदिकाल से, सवेरे से, जैसे कहते हैं ना आदिकाल, युगों का आदिकाल सतयुग है, स्वर्णिम युग, कितना सुंदर, कितना अच्छा। ऐसे पूरे दिन का आदिकाल कौन सा है? अमृत वेला। तो इसलिए अमृत वेले को हमने जितना अच्छा बनाया, पूरा दिन हमारा अच्छा जाएगा। अमृत वेला अगर अच्छा नहीं गया, तो पूरा दिन हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए अमृत वेले ही अपनी पूरे दिन की दिनचर्या बना लें, और दिनचर्या के आधार से, और अपने मन को भी बाबा को पत्र लिख करके हल्का कर लें, मन को पॉजिटिव लाइन दे दें, उसके बाद पूरा दिन आप पुरुषार्थ करते हुए निकालें, हलचल में न आए, अचल अडोल एक रस स्थिति को अपनाते हुए चलें, तो अपने अंदर की चेकिंग, स्वनिरीक्षण, स्वचिंतन हम अच्छी तरह से कर सकेंगे, और स्व उन्नति की ओर आगे हम बढ़ सकेंगे। दूसरी बात, मुरली का महत्व बताया। तीसरी बात, आपने देखा होगा दादी जानकी को कि कितना उनको ट्रैफिक कंट्रोल का महत्व है। आज हम देखते हैं कि कई दो घंटा चार घंटा भी योग में बैठ जाते हैं, लेकिन हम ट्रैफिक कंट्रोल पर इतना अटेंशन नहीं रख पाते। आज बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी दादी जी बैठी होंगी, अगर टाइम ट्रैफिक कंट्रोल का हो गया, तो दादी जरूर बीच में बोलती है ट्रैफिक कंट्रोल हो जाने दें, ट्रैफिक कंट्रोल अभी बजने वाला है, 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, 10:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल होगा। भारत दादी को याद रहेगा, अरे 12 बज गए ट्रैफिक कंट्रोल होगा, बहुत याद रहता है। तो चाहिए 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल होता है। संकल्पों को हम जो बीच बीच में माया की तरफ, व्यर्थता की तरफ संकल्प चले जाते हैं, तो संकल्पों का कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, तुरंत हम 3 मिनट में बाबा की याद में बैठ गए, तो वापिस हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव की तरफ ला सकते हैं, इधर उधर व्यर्थता से बचा सकते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल पर पूरा अटेंशन अगर हम देते हुए चलते हैं, उसमें भी हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता है। हमेशा हमें याद रहना चाहिए जो ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है वो हमें कभी न भूले। उससे आप खुद महसूस करेंगे कि हमारी उन्नति, हमारा पुरुषार्थ तीव्र होने लगा है। और नेगेटिव को पॉजिटिव करते हुए चलें। दूसरी बात, हम अगर अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना चाहते हैं तो जितना हम अपने आप को क्लीन रखें, स्वच्छ रखें और क्लियर रहना सीखें और केयरफुल रहें, तीनों बात, क्लीन, क्लियर और केयरफुल। क्लीन माने सच, अपने आप से सच रहें, कई दूसरों से कोई बात छिपाते हुए, झूठ बोलते हुए, घुमाते हुए कभी कभी अपने आप से भी ऐसा करने लगते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप से झूठ ना बोलें, अपने आप से सच्चे रहें, अपने आप की अंदर तक की अच्छी तरह से चेकिंग करना सीखें, क्लीन रहें। अंदर की सफाई बहुत जरूरी है, सच्चाई, सफाई, स्वच्छता, अपनी अंदर की आत्मा की जागृति, अंदर की शक्तियों को जागृत करें। अंदर की चेतना अगर जागृत रहती है तो ही जीवन जागृत रहता है, तो ही जीवन में सफलता और सफल रीति से हम जीवन जी सकते हैं। तो जो अपने आप से सच रहता है, क्लीन रहता है, तो वो दूसरों के साथ भी फिर वैसा ही रहता है। और दूसरा क्लियर, जितना हम अपने निमित्त आत्माओं के साथ क्लियर कनेक्शन रखते हुए चलते हैं तो क्लियर कनेक्शन हमें करेक्शन देता है, कहां हम कहीं भटक गए या कोई मार्जिन माया की ऐसी मिल गई जहां हम फंस गए, तो क्लियर कनेक्शन हमें करेक्शन देते हुए बचा लेता है। क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है, लास्ट समय चल रहा है, लास्ट समय तक भी माया कई रूपों से आएगी, कई प्रकार से आएगी, जो बाबा के गुदड़ी के लाल होंगे वो लास्ट तक बचेंगे। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया अपनी ओर खींच लेती है, उसका कारण क्या है, उनका क्लियर कनेक्शन निमित्तात्माओं के साथ नहीं हो पाता, इसलिए करेक्शन उनको नहीं मिल पाती, इसलिए वो बच नहीं पाते, माया उनको खींच लेती है। इसलिए जो हैं, जैसे हैं, जो हमारी निमित्त आत्मा बनी है, बाबा ने हमें दी है, उनका शुक्रिया करते हुए उनके साथ जितना हम क्लियर कनेक्शन रखेंगे, क्लियर रहेंगे, उतना खुद हल्के रहेंगे, ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर जिम्मेवार है, हमारी भी रक्षा करने वाला कोई है। जैसे माता पिता होते हैं, अगर बच्चे उनसे जितना क्लियर रहते हैं तो उनको सुरक्षा महसूस करते हैं कि हाँ हमारे माँ बाप हैं, लेकिन जब कोई कनेक्शन ही नहीं रखेंगे तो उनको महसूस नहीं होता छत्र छाया का। ऐसे ही हम बाबा की छत्र छाया में तो हैं, लेकिन बाबा ने जिन निमित्त आत्माओं को आपकी छत्र छाया के निमित्त बना रखा है, उनसे भी क्लियर कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है। इससे भी हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता है, क्यों, क्लियर कनेक्शन हमें हर बात में सावधानी देते आगे बढ़ाता है, बचाता है, शिक्षाएं देता है और संभालता हुआ हमें पुरुषार्थ की लाइन से तीव्र पुरुषार्थ की तरफ ले जाता है। तब हम ये भी अटेंशन हम जीवन में रख पाते हैं कि हम केयरफुल रहें, एकदम अलर्टनेस से रहें, हम अपने आप की भी केयर कर सकें और बहुत अटेंशन रखते हुए जीवन में चलें, ताकि कभी भी टेंशन क्रिएट ना हो। और टेंशन क्रिएट होने का कारण केवल नेगेटिविटी होती है, और जब हम केयरफुल रहने लग जाते हैं तो चेयरफुल बन जाते हैं। चेयरफुल माना खुश मिजाज, ऐसा चेहरा हो जाता है जिसे बाबा क्या कहते हैं, अपने चेहरे से सेवा करो, चेहरे को म्यूजियम बनाओ, कहता है ना। तो जितना हम क्लीन क्लियर केयरफुल रहेंगे तब तो हम चेयरफुल रहेंगे, चेहरे को हम इतना खुश मिजाज बना सकेंगे, बाप का नाम बाला कर सकेंगे। तो इसलिए अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते हुए हमें इन सब बातों पर अटेंशन देना होगा कि हम क्लीन रहें, क्लियर रहें, केयरफुल रहें, चेयरफुल रहें, मुरली का महत्व जान करके चलें, मन को सदैव पॉजिटिव की तरफ रखें, दैनिक दिनचर्या हमारी कभी भी ऊपर नीचे ना हो, कभी डिस्टरबेंस ना हो, और हमेशा बाबा को साथ रखते हुए अगर हम अपने जीवन में चलते हैं तो सफलता की जर्नी हमारी रहेगी। जीवन में हम जी तो रहे हैं लेकिन सफल रीति से जिएंगे। आज घर से आप कहीं भी जा रहे हैं, बाबा के कमरे में जाएं, बाबा से बोले बाबा आज हम वहां जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। आने के बाद फिर बाबा को कहें बाबा हम फलानी जगह गए, वहां सेवा ये हुई, ये कार्य हुआ, हम करके आ गए। घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं अपने से, तो उनको हम बता के जाते हैं, आके भी बताते हैं क्या क्या हुआ। तो ऐसे बाबा को बोल के जाएं, आकर बताएं, बाबा को पूरा अपने साथ साथ रखें। संगम युग का जीवन का सुख तो यही है, ईश्वर हमारा साथी है। पहले तो हम गाते थे जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो अभी तो वो प्रैक्टिकल बात है ना, हमने भगवान को अपना साथी बना लिया है ना, सिर्फ कहने से नहीं लेकिन प्रैक्टिकल उसको महसूस करो कि क्या वास्तव में हमने भगवान को अपना साथी बनाया है, हम उसको साथ लेकर चल रहे हैं, हर पल हर वक्त हमारे वो साथ रहता है, उसके साथ का हमें अनुभव है, हम अपने जीवन में वो सुरक्षा का अनुभव करते हुए चल रहे हैं कि ना आंधी ना तूफान कोई भी आ जाए मुझे रोक नहीं सकता, मेरा साथी मेरे साथ है। तो वो मेरे साथ है, मुझे किस बात की परवाह है। इसलिए उसको हमें केवल गीत गाना, केवल मुंह से बोलने वाली बात नहीं है लेकिन संग संग बाबा को अपने हर पल हर क्षण संग रखते हुए चलना है। देखो ब्रह्मा बाबा भी हम बच्चों को सिखाने के लिए ही बोलते हैं कि मैं भोजन करता हूँ तो भी कहता हूँ बाबा के संग कर रहा हूँ, परंतु खाते खाते फिर भूल जाता हूँ, फिर अपने आप को चुटकी लगाता हूँ कि भी कैसे बाबा को भूल गए, ताकि बच्चे भी ऐसा करें। शरीर को स्नान कराता हूँ तो भी महसूस करता हूँ। तो बाबा ब्रह्मा बाबा ने भी तो यही पुरुषार्थ किया, हम बच्चों को भी फॉलो करना है ना। बाबा मम्मा चलो हमने नहीं देखा लेकिन हमारी दादियां जो बाप समान हमारे सामने एक उदाहरण है, आज इस उम्र में भी दादियों का पुरुषार्थ अगर हम देखें तो लगेगा हम तो बहुत पीछे हैं अभी, आज भी इतना तीव्र पुरुषार्थ से आज दादियां हमारे सम्मुख हमें करती हुई नजर आ रही हैं, तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में आगे बढ़ाना है और महसूस करते जाना है कि हमें सफलता का अनुभव हो रहा है। अब सफलता भी हर एक अपने अपने एंगल से महसूस करते हैं। अगर किसी ने कुछ देखा भी मेरा ये कार्य नहीं हुआ, मैंने तो ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं, ऐसा हो गया, ये होगा, कहां मेरी यहां सफलता हुई, सफलता के भी एंगल अलग अलग हैं। हर प्रकार से उनको उनकी इच्छा अनुसार कार्य हो रहा है तो कहते हम सफल हैं, लेकिन सफलता क्या है उसको भी हमें ठीक रीति से संभलना है, समझना है। तो बाबा ने हमें ऐसा ज्ञानी बनाया है, ज्ञानी माना समझ, समझ से चलने वाले, समझदारी बहुत बड़ा गुण है। कई बार कहते हैं ना, जानना, मानना और फिर चलना। अगर हमने कोई बात को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं और जान करके माना ही नहीं, तो हम चलेंगे कैसे? प्रैक्टिकल चलने के लिए जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। आज कई बार हम अपने जीवन में अपनी कमियों को परिवर्तन करना चाहते पर नहीं कर पाते। कारण, सामने वाला, संपर्क वाला, हमारा खास व्यक्ति भी हमें रोज रोज कह रहा है, ये तुम्हारे अंदर कमी है, ये नहीं होना चाहिए, ये परिवर्तन करो, तो भी हम नहीं कर पाते। उसका कारण कि हम उसे महसूस नहीं करते, भले वो सामने वाला हमें कहता है। अगर हम ये महसूस करें, हमारे अंदर अगर महसूस तक की शक्ति होगी, तो हम परिवर्तन कर पाएंगे। अगर महसूसता की शक्ति नहीं है, तो हम कभी परिवर्तन नहीं करेंगे। आज अमृत वेला ही है, हम 4 बजे नहीं उठे, सामने वाला कहता है भी आपका आजकल योग नहीं हो रहा है, आप कारण पे कारण बताते जाएंगे। हम रात को देर से सोए थे इसलिए सवेरे नहीं हुआ, वैसे तो हम करते हैं, आज कल हमारी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं हुआ, परसों ये कारण था इसलिए नहीं हुआ, तो आप कभी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ये कारण वो कारण कहते रहेंगे तो परिवर्तन कैसे होगा? कारण तो कोई होता है, तभी बाबा के बच्चे अमृत वेला मिस करते हैं, ये तो पक्का है, क्योंकि सबको मालूम है अमृत वेला बाबा हाजिर रहता, खजाना खुला रहता, खजानची हाजिर है, जिसको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, मालूम है ना सभी को। लेकिन फिर भी मिस हो जाता, कारण तो होता है कोई ना कोई, लेकिन सामने वाला अगर हमें बता रहा है और हमने उसको महसूस ही नहीं कर रहे हैं और कारण ही बताए जा रहे हैं, तो कभी परिवर्तन नहीं होगा। और अगर हमने महसूस कर लिया कि हाँ वास्तव में मेरा अमृत वेला मिस हो रहा है, जरूर हमें चेंज करना चाहिए। आप देखो दूसरे दिन से आप अमृत वेले बिल्कुल फिक्स टाइम पर उतर जाएंगे। पर आपका दिल अगर महसूस नहीं करेगा कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है या मेरे से ये मिस हो रहा है, तो परिवर्तन भी नहीं होगा। महसूसता की शक्ति ही परिवर्तन कराती है, चाहे कोई भी कमी हो, कोई भी कमजोरी हो, कोई भी भूल हो, पहले कोई भी गलती हो, कोई भी अवगुण हो, भले सामने वाला में कह रहा है, हम महसूस ही नहीं कर रहे, हम मान ही नहीं रहे उस बात को, तो क्यों परिवर्तन होगा? महसूस करेंगे तो परिवर्तन करेंगे ना, महसूस ही नहीं करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो जीवन में होना बहुत जरूरी है। अष्ट शक्तियां राजयोग से हमारे अंदर आती हैं। हम दूसरों को कहते हैं ना, लेकिन वो अष्ट शक्तियां हम अपने अंदर भी चेक करते रहें कि वो 8 शक्तियां हमारे अंदर राजयोग से आई हैं या नहीं, कि उन 8 शक्ति के अलावा भी तो बहुत जरूरी जरूरी शक्तियां हैं, महसूसता की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति कितनी जरूरी है। सब राजयोग के आधार से, प्रभु मिलन के आधार से, प्रभु संग के रंग के आधार से, उसकी पालना में पल करके ही हम अंदर की शक्तियों को जागृत करते हुए अपने अंदर अंतर्निहित शक्तियां उन सब को जागृत करते हुए चलते हैं, तब हम शक्तिशाली कहते हैं। हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वमान तो लेते हैं ना, लेकिन अच्छी तरह से, सिर्फ कहने से नहीं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। लेकिन शक्तियों को क्या हमने जागृत किया हुआ है? अपने आप से पूछे, महसूस करें, क्या हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं? सिर्फ कहने से नहीं, ऐसा तो बनना पड़े ना। तो शक्तियों को जागृत करके नहीं रखेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में भी उतना सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, ये स्वमान में टिकते टिकते, अपने आप की चेकिंग करते करते महसूसता के आधार से हम मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर भगवान भी कहलाएंगे। भगवान के बच्चे कौन हुए? मास्टर भगवान। भगवान माना भाग्यवान। हम कितने भाग्यवान आत्माएं हैं जो अपने भाग्य का हम सुमिरन करते हैं। तो भगवान का भी हम सुमिरन करते हैं, साथ में अपने भाग्य का भी हम सुमिरन करते हैं। कहते ना वाह बाबा वाह, तो वाह रे मैं भी वाह, और वाह मेरा पार्ट भी वाह 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 वाह। कहते हैं ना सबकी वाह वाह करते हैं, हाय हाय, और उस सबसे तो बाबा ने हमें दूर कर दिया, वाह वाह बना दिया। तो वाह बाबा वाह तो है ही, बाबा हमें मिला तब तो हमारा जीवन भी वाह वाह बनेगा ना। अगर हम बाबा को अपने साथ हर पल हर संग हर कार्य में साथ में लेकर चलते हैं तो वाह बाबा वाह मेरा भाग्य वाह मेरा पार्ट सब वाह 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 बन जाता है। और हाय हाय जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाती है, क्योंकि हमने अपना बनाया और अपनी सारी जिम्मेवारियां अपने सारे बोझ अपने सारे टेंशन अपनी सारी फिक्रें अपनी सारी चिंताएं बाबा को सौंप दी। जब बाबा को सब कुछ सौंप दिया फिर महसूस करो, जब मैंने बाबा को सब सौंप दिया तो मैं इतनी हल्की आत्मा बनी हूं। मैं फिर टेंशन क्यों लू, क्यों चिंता लू, सब फिक्र तो बाबा को दे दी। और बाबा ने कहा बच्चे तुम बनो बेफिक्र बादशाह, है ना? तो हम तो बेफिक्र बादशाह बन गए ना? सब फिक्र हमने खुद बाबा ऑफर कर रहा है, संगम युग भगवान खुद ऑफर कर रहा है, सब मुझे दे दो, तो सारी फिक्र उसे हम क्यों ना दे दे। और बेफिक्र बादशाह बेगमपुर का बादशाह बाबा ने हम बच्चों को बनाया है, वो नशा हमें चढ़ा रहे तो पुरुषार्थ तीव्र होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, जरूर होगा। तो तीव्र पुरुषार्थ कहीं समझ नहीं पाते, तीव्र पुरुषार्थ माना क्या? बस बाबा की जो बनाई हुई श्रीमत है, अमृत वेला योग, नुमा शाम का योग, मुरली का महत्व, दैनिक दिनचर्या ठीक, क्लीन करेक्ट क्लीन क्लियर कनेक्शन, इन सब बातों पर अटेंशन देना, बनाए हुए ट्रैफिक कंट्रोल पर अटेंशन, सब पर अटेंशन देते देते हमारा पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली तीव्रता की लाइन में आ जाता। बस यही तीव्र पुरुषार्थ है। बाबा से इन सब बनाई हुई नियम मर्यादा श्रीमत से जुड़े रहना बाबा के साथ, यही तीव्र पुरुषार्थ है। बाबा चुंबक अपने आप खींच लेता है, वो क्षमा है, हम परवाने हैं उस पर फिदा होकर चले, केवल फेरी पहनकर नहीं। फिदा होने वाले जल मरते हैं, दीपावली के दिन निकलते हैं ना पतंगे, कैसे कोई बत्ती पर चिपक कर जल मरते हैं और कोई फेरी पहनते हुए चले जाते, तो हमें तो जल मरना है, बाबा के ऊपर फिदा हो जाना है, फेरी पहनने वाला नहीं बनना है। तो इस प्रकार चलते 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 अभी तो हम ब्राह्मण जीवन में है, ब्राह्मण भी हमें चेकिंग करना है इस ब्राह्मण लाइफ में भी, कि हम संपूर्ण हाईएस्ट संपूर्ण ब्राह्मण हैं, उसकी भी क्वालिफिकेशन है, वो सारे नियम फुल कास्ट ब्राह्मण के क्या हमने वो पूरे पालन किए हुए हैं। फुल कास्ट ब्राह्मण बनेंगे उसके बाद ही हम ब्राह्मण सो फिर फरिश्ता भी बनना है, फरिश्ता सो फिर देवी देवता फिर वो बनना है, फरिश्ता सो देवता, ब्राह्मण सो देवता नहीं, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, अभी तो हम सब ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण में भी चेकिंग अच्छी तरह से करो कि फुल कास्ट ब्राह्मण हो गए हैं, सब हमारे ठीक रीति से नियम चल रहे हैं। उसके बाद फरिश्ता माना, जिसका एक बाप से रिश्ता, फर्श पर रहने वाला फरिश्ता नहीं, अर्श पर रहने वाला। तो हम अर्श पर रहने वाले, फर्श से ऊपर अर्श पर रहने वाले, एक से सर्व रिश्ते रखकर चलने वाले ऐसे फरिश्ते हैं। ऐसा हमें बनना है फरिश्ता। तीव्र पुरुषार्थ ही हमें फरिश्ते तक लाता है। कहते हैं ना, फरिश्ता समय समय पर सबका हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। जहां कोई नहीं पहुंचता वहां फरिश्ता पहुंच जाता है। दुख दर्द में कोई ऐसी परिस्थिति में महसूस करते हैं ना लोग कि अरे न जाने कौन, कहां से वो फरिश्ता आया और मेरा काम कर गया, वो कहां चला गया पता ही नहीं पड़ा है ना? तो वो सूक्ष्म अंतवाहक शरीर के द्वारा वो भी हम बच्चों को बाबा ने सेवा करना सिखाया है कि कहां कौन बाबा का बच्चा दुख दर्द में है। हम अपने अंतवाहक शरीर से सूक्ष्म शरीर के द्वारा कैसे हम सकाश दे सकते हैं जो उनको महसूस हो कि अरे वो फरिश्ता आया था। कई तो अच्छी तरह से पहचान भी जाएंगे, आपको बोलेंगे कि अरे आप तो हमारे पास फलाने दिन आए थे, आप कहेंगे नहीं हम तो नहीं आए, नहीं आए थे आप। वो महसूस करेंगे। कभी कभी हम बहुत पावरफुल स्टेज में योग में बैठते हैं तो अगर हमें कुछ नहीं भी आता, बस अशरीरी होकर अगर हम बाबा को समर्पित होकर योग में बैठ जाते हैं तो बाबा भी हमें यूज करता है। हमारे भक्तों के पास हमें सूक्ष्म रूप से अंतर्वाक शरीर के रूप से ले जाता है और अनुभव करा के ले आता है, वो हमें नहीं मालूम पड़ता। फिर आप योग में महसूस करेंगे कि अरे आज मैं न जाने कहां खो गई थी, कुछ पता ही नहीं लगा, योग बहुत अच्छा लगा। अगर हम बहुत अच्छी तरह से योग में डूब गए हैं, उस परमात्म प्यार में लव में लीन हो गए हैं तो बाबा भी हमें यूज करता है सेवा में। ऐसा फरिश्ता हमें बनना है जो हरेक के दुख दर्द में हम काम आए, हरेक की ऐसी परिस्थिति में जहां कोई ना पहुंच सके वहां हम फरिश्ता पहुंच जाए और वो महसूस करें कि फरिश्ता कोई आया था और हमारे कार्य को पूरा करके चला गया। उसके बाद ही हम हमारी ऐसी स्वर्णिम दुनिया, हमारी ऐसी राजधानी, हमारे ऐसा स्वर्णिम संसार सतयुगी दुनिया आ रही है। हम सभी को ये संदेश देते हैं, अब नया युग नवीन दुनिया आई की आई, जहां हमें देवी देवता बन करके फिर वहां पर राज्य करना है। तो बाबा कहते मैं तो तुम्हें राजाओं का भी राजा बनाने आया हूं, राजाओं के भी राजा हमें बनने के लिए वर्तमान में बाबा को हर बच्चा राजा बच्चा नजर आए, उस दृष्टि से बाबा हमें देखना चाहते हैं। तो हर बच्चा राजा बच्चा माना, जिसका अपनी हर कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य चलता हो। मैं आत्मा तो राजा हूं, ये सब कर्म इंद्रियां क्या है, कर्मचारी, इनके द्वारा हमें अपना कार्य कराना है। जो राजा ऑर्डर करे, आज दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं, अरे जो हम करना चाहते हैं वो तो हम कर ही नहीं पाते हैं, और जो हम करना चाहते हैं वो तो हम कर ही नहीं पाते हैं, और जो हम नहीं करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, उसे क्या कहें, जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे, जो करना चाहिए वही तो सकारात्मक है, जो नहीं करना चाहिए वो नकारात्मक है, नेगेटिव है। जो करना चाहिए वही करे, वो है सकारात्मकता। पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिव रीति से चलना माना जो हम करना चाहें वही करें, जो हम नहीं करना चाहें वो हम बिल्कुल भी नहीं करें। ऐसे नहीं हम करना तो नहीं चाहते थे किंतु कर लिया, हम हाथ से ये गलत कार्य नहीं करना चाहते थे हो गया, हम आंख से इधर देखना नहीं चाहते थे परंतु देख लिया, हम पांव से इधर जाना नहीं चाहते थे परंतु चले गए, उसे क्या कहेंगे? उसे पॉजिटिव नहीं कहेंगे, उसके ऊपर राज्य भी हम नहीं कहेंगे। हमारा अपनी कर्मिंद्रियों पर राज्य नहीं होता, हमारे कहने पर ऑर्डर पर कर्मिंद्रियां नहीं चलती, तब हम ये कहते हैं हम हाथ से ये कार्य करना नहीं चाहते थे परंतु कर लिया, क्योंकि हाथ रूपी कर्मिंद्री हमारे कंट्रोल में नहीं है, पांव रूपी कर्मिंद्री हमारे कंट्रोल में नहीं है, आंख रूपी कर्मिंद्री हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हमारे अंदर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है, शासन करने की शक्ति स्वयं के ऊपर, तो कंट्रोलिंग रूलिंग पावर है माना हम स्वयं के राजा हैं। जो खुद के ऊपर खुद ही राज्य नहीं कर सकते, खुद के ऊपर कंट्रोलिंग रूलिंग पावर नहीं चला सकते, तो फिर विश्व के राजा कैसे बनेंगे? सबके ऊपर कंट्रोल और रूलिंग पावर कैसे चलाएंगे? तो इसके लिए अपनी पूरी दैनिक दिनचर्या को भी सेट करना हो, हमें अपने जीवन में सफल करते हुए सफलता की जर्नी जीना हो। दादी कहती है मुझे अपना कोई भी समय का आयोजन करना होता, योजना अपनी बनानी होती, तो मैं परमात्मा शक्ति और ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेले की शक्ति के आधार से चलती हूं। दो शक्तियां, इसके आधार से मैं अपनी पूरी दिनचर्या बनाती हूं, अपने समय का आयोजन करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति, अमृत वेला की शक्ति बहुत शक्ति देती है, बहुत पावर देती है, और समय ये ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति, तो इन पावर को अमृत वेले के से प्राप्त करके और परमात्मा शक्ति माना परमात्मा की याद के आधार से करंट जो हमें मिलती, जो शक्ति मिलती, जो पावर मिलती, उससे हम अपना समय का आयोजन करते हैं। क्योंकि संगम युग का समय ही अपने आप में बहुत बड़ा खजाना है, ये समय लौट कर फिर नहीं आना है। समय कहते हैं कि कोई चीज अगर खो जाती है आप पुनः बनवा सकते हैं, गहने खो गए आप वापिस बना सकते हैं, हर चीज आपको वापिस मिल सकती है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़कर चला गया तो भी वो पुनः दूसरा शरीर लेकर भी आ जाएगा, पूरा जन्म पुनर्जन्म हो जाएगा। लेकिन संगम युग का जो समय है अगर हमने वेस्ट किया तो सिवाय पश्चाताप के कुछ भी छोड़कर नहीं जाएगा, समय लौट कर आएगा। आज जो समय, तो इसलिए समय कभी लौट कर नहीं आता। संगम युग के समय सबसे बड़ा खजाना है, समय का खजाना। जितना हम समय को सफल करते हुए चलते हैं उतना हमारा जीवन जो है वो सफलता की ओर बढ़ते बढ़ते हमें सफलता की जर्नी में ले जाता है। इसलिए हम अपने आप के लिए अपने खुद सिद्धांत बनाते हुए चलें, खुद छोटे छोटे लक्ष्य अपने आप अपने लिए बनाते हुए चलें, तो लक्ष्य के अनुसार लक्षण भी हमारे अंदर आते जाते हैं और हमें अपने जीवन में बहुत ही अपने आप से ही खुशी का खजाना और परमात्म प्यार की अनुभूतियों के साथ हम इस संगमयुगी जीवन को जी पाते हैं। ओम शांति।